नमस्कार बच्चों, मैं चेतराम वर्मा, TGT हिंदी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 4 मुंबई से। आज हम सीता की खोज अनुखंड 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि 2 खंड इसके हम पढ़ चुके हैं, तो तीसरा खंड नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, वो आज हम इस अध्याय में आगे कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। सीता की खोज करते हुए जब जटायु ने उन्हें सीता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे दी थी कि रावण उसे उठा करके दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है, तो वनवासी राजकुमार, वनवासी मतलब वन में रहने वाले राजकुमार, यहाँ राम और लक्ष्मण के बारे में बताया जा रहा है कि राम और लक्ष्मण रोजाना सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज के लिए चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का मतलब है उन पर हमला कर दिया। उसका नाम कबंद था। कबंद देखने में बहुत डरावना था, मोटे मांसपिंड जैसा, ऐसा लग रहा था जैसे वो मांसपिंड हो, मांस का टुकड़ा। गर्दन नहीं थी उसकी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे और जीभ सांप की तरह लंबी लपलपाती हुई थी। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंद प्रसन्न हो जाता है। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे बैठे बिठाए मन मांगा आहार मिल गया था। आहार मतलब खाना, आज उसे खाने के लिए जो है बिन मांगे ही वो मिल गए थे राम और लक्ष्मण। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता, इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक झटके में कबंद के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर नीचे गिर पड़ते हैं। कबंद उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। जवाब में राम और लक्ष्मण ने कहा कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं, हम सीता की तलाश करने निकले हैं, क्योंकि रावण जो है उसे हर के ले गया है। राक्षस कबंद ने राम के बारे में पहले से ही सुन रखा था, तो साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। साक्षात मतलब अपने सामने उनको देख करके वो प्रसन्न हो जाता है। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। यदि तुम मेरी मदद करो, मेरी एक विनती है वो स्वीकार करो, तो तुम्हें, तुम दोनों को सहायता का मैं उपाय बता सकता हूँ। मेरा अंतिम संस्कार राम करें, यानी मेरा अंतिम संस्कार राम करें, तो मैं आपको, तुम दोनों को सहायता का उपाय बता सकता हूँ। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंद बोला, जब राम ने कहा कि ठीक है, तब कबंद कहता है, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर चले जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित का अर्थ होता है जिसे अपने जगह से, देश से निकाल दिया जाता है, वो निर्वासित जीवन होता है। तो कबंद उन्हें कहता है कि सुग्रीव जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है, सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। अब कबंद की सांस टूटने लगी थी, यानी उसका अंत निकट था, और राम लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए, निकट मतलब पास, पास बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। जिस रास्ते से आप जाओगे वहीं पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें, यानी जब आप उधर से जाएंगे तो शबरी से मिल करके आप आगे जाना। और ऐसा बोलते बोलते कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपने वचन के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ, यानी तसल्ली हुई उनको, और सीता तक पहुंचने की जो उनकी आशा थी, उम्मीद थी, वो बलवती हुई, यानी वो भी जो है बलवान होती है। अब उन्हें लगता है कि वे जल्दी ही सीता का पता लगा लेंगे, उनकी खोज कर लेंगे। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य, यानी नेचुरल ब्यूटी जो थी, वो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही सुंदर थी। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ था, बेलों से घिरा हुआ था। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। जो मतंग ऋषि की शिष्या शबरी थी, वो वहीं, उनकी कुटिया भी आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उनकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, यानी बूढ़ी हो गई थी वो, लेकिन आंखें ठीक थी, देख सकती थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली रहती थी। वे हर समय राम का इंतजार करती रहती थी, क्योंकि मतंग ऋषि ने उन्हें बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उनसे मिलेंगे। इसलिए वे हमेशा राम के इंतजार में अपनी नजरें लगाए रहती थी। जब राम आश्रम में आए तो उन्हें देखकर शबरी बहुत प्रसन्न होती है, उनकी आवाभगत करती है, सेवा करती है। आवाभगत करना मतलब स्वागत सत्कार करना, और खाने के लिए मीठे फल देती है, रहने के लिए उनको जगह देती है। अब उनकी आंखें तृप्त हो गई थी, यानी राम का उन्होंने दर्शन कर लिया था, तो उनकी जो आंखों की प्यास थी राम के दर्शन के लिए, वो बुझ चुकी थी, तृप्त हो गई थी। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा, आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। तो शबरी उनसे कहती है कि आप सुग्रीव से दोस्ती कर लीजिए, वे आप सीता की खोज में आपकी अवश्य मदद करेंगे। शबरी ने राम को आश्वस्त किया कि उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर है, अद्भुत शक्ति वाले बंदर है, जो सीता की खोज करने में तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। और उसके बाद अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। उनकी व्याकुलता और घट गई थी, यानी सीता के विरह में जो व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, जो उनकी परेशानी थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही थी। मन में शांति लौट आई थी, उनका मन शांत होने लगा था, क्योंकि अब उन्हें सीता की तलाश के लिए एक उम्मीद मिल गई थी। और इस उम्मीद में अब वो सुग्रीव से मिलने के लिए ऋषिमुख पर्वत की तरफ चल देते हैं। तो आगे की कहानी जो रहेगी हमारी, राम और सुग्रीव, उसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।